नमस्कार और आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7, जिसका नाम है द क्लॉज क्लब, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज की इरादा ये है कि इस चैप्टर के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं उन्हें फटाफट समझ लें, खासकर क्लॉजेस के बारे में। देखेंगे कि कैसे वाक्य के अलग अलग हिस्से मिलकर एक मतलब बनाते हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान और दिलचस्प रखा जाए, एक तरह से पूरे चैप्टर का निचोड़। तो इसमें है क्या क्या, हम बात करेंगे कि भाई क्लॉज क्या होता है, फिर ये मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज इनमें क्या फ़र्क है, और फिर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के भी प्रकार हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये भी देखेंगे कि इन क्लॉजेस को सही से जोड़ा कैसे जाता है। और हाँ, एक बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है अक्सर, क्लॉज और फ्रेज, इनका अंतर क्या है, ये समझना बड़ा काम आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये क्लॉज आखिर है क्या भला, सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है।
लगता तो है, पर है ये बहुत ही मतलब बुनियादी चीज। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों जरूर होते हैं। आप इसे वाक्य का सबसे छोटा लेकिन पूरा हिस्सा मान सकते हैं, जैसे एक मिनी सेंटेंस। यही छोटे छोटे हिस्से मिलकर फिर बड़े वाक्य बनाते हैं, तो एक तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं।
बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। और जैसा चैप्टर में बताया है, इन ब्लॉक्स के भी दो मुख्य प्रकार हैं, है ना? एक इंडिपेंडेंट या जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज। इनमें क्या खास है?
बिल्कुल, तो मेन क्लॉज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये अकेला खड़ा हो सकता है और अपना पूरा मतलब दे सकता है, इसे किसी और की जरूरत नहीं अपना अर्थ पूरा करने के लिए। चैप्टर में उदाहरण भी बहुत सीधे दिए हैं, शी इज रीडिंग अ बुक, या फिर द सन इज शाइनिंग। ये दोनों अपने आप में पूरे वाक्य हैं, पूरा मतलब दे रहे हैं।
जैसे वाक्य की टीम के वो सदस्य जो अपने दम पर खेल सकते हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी तरफ है सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये सबॉर्डिनेट यानी कि सहायक होता है, ये बेचारा अकेले खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ एक सबॉर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे ना, तो सुनने वाले को लगेगा कि बात अधूरी रह गई, कुछ मिसिंग है। इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए एक मेन क्लॉज से जुड़ना ही पड़ता है, और ये अक्सर कुछ खास शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे बिकॉज, व्हेन, इफ, हु, दैट, ऑल्दो, इस तरह के शब्दों से।
पेज 48 पर एक विजुअल भी है जो दिखाता है कि ये कैसे मेन क्लॉज के साथ जुड़ते हैं।
अच्छा, तो ये वो हिस्से हैं जो अकेले तो अधूरे हैं, लेकिन मेन क्लॉज के साथ जुड़कर कहानी को पूरा करते हैं या उसमें और जानकारी जोड़ते हैं, जैसे कि क्यों कुछ हुआ या कब हुआ या कौन था वो।
यहीं से वाक्य इंटरेस्टिंग बनने लगते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, यहीं पर भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। ये सबॉर्डिनेट क्लॉजेज ही हैं जो वाक्यों में डिटेल भरते हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी वाला और सटीक बनाते हैं। सिर्फ द डॉग बार्क्ड कहने की बजाय आप कह सकते हैं द डॉग बार्क्ड व्हेन द डोबेल रैंग। ये व्हेन द डोबेल रैंग एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, या फिर द डॉग बार्क्ड बिकॉज इट सॉ अ कैट। ये बिकॉज इट सॉ अ कैट भी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। देखिए कितनी एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई।
तो फिर ये जुड़ते कैसे हैं? मेरा मतलब है, एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को साथ कैसे लाते, कोई खास तरीका है?
हाँ, तरीका है, कोई गोंद नहीं है, पर खास शब्द जरूर हैं। इन्हें हम कहते हैं कंजंक्शंस, या अगर और सटीक होना हो तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, जब सबॉर्डिनेट क्लॉज जोड़ रहे हों। वैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होते हैं जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, पर चैप्टर 7 का फोकस ज्यादातर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस पर है। तो हाँ, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही वो कनेक्टर हैं। पेज 50 पर एक टेबल भी है जो इन जोड़ने वाले शब्दों का काम अच्छे से समझाती है।
हाँ, वो टेबल मैंने देखी, काफी काम की है। उसमें बताया है कि अलग अलग शब्द अलग अलग मकसद के लिए होते हैं।
बिल्कुल, जैसे अगर आपको कारण बताना है तो आप बिकॉज या सिंस यूज करेंगे, समय बताना है तो व्हेन, व्हाइल, एज, सून एज जैसे शब्द हैं, कोई शर्त रखनी है तो इफ, अनलेस का इस्तेमाल होगा, अगर दो उल्टी बातें कहनी है तो ऑल्दो, इवन दो काम आते हैं, कोई मकसद बताना हो तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट है, और अगर किसी व्यक्ति या चीज के बारे में ज्यादा जानकारी देनी है, उसे डिस्क्राइब करना है, तो हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं जो एडजेक्टिव क्लॉजेस बनाते हैं। तो ये शब्द सिर्फ जोड़ते नहीं बल्कि दोनों हिस्सों के बीच का रिश्ता भी साफ करते हैं कि वो कारण कार्य का रिश्ता है, समय का है, शर्त का है या कुछ और।
इसको उदाहरण से समझते हैं। पेज 50 पर ही एक उदाहरण था, आई डिडंट स्लीप वेल बिकॉज द डॉग वॉज बार्किंग। यहाँ बिकॉज साफ बता रहा है कि नींद क्यों नहीं आई, कारण कुत्ते का भौंकना था।
सही।
एक और है, वी विल गो टू द पार्क इफ इट डजंट रेन. यहाँ इफ पार्क जाने की शर्त बता रहा है कि बारिश न हो.
बिल्कुल.
और पेज 51 पर जो मैच एंड कंबाइन वाला हिस्सा है उसमें से एक आई लाइक द बॉय हु हेल्प्ड मी, इसमें हु हेल्प्ड मी उस लड़के के बारे में बता रहा है जिसे मैं पसंद करती थी. मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है.
हाँ, ये एडजेक्टिव क्लॉज का उदाहरण हो गया.
वैसे उस पेज पर कुछ उदाहरण मुझे थोड़े अजीब भी लगे थे, जैसे ही क्राइड बिकॉज आई हैड अ हेडेक, या फिर आई डिडंट गो टू द पार्टी व्हेन आई फिनिश माय होमवर्क. मतलब ग्रामर के हिसाब से तो जुड़े हैं, प्रोज की बनावट दिख रही है, पर मतलब थोड़ा अटपटा सा है, शायद बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऐसा लग रहा है.
हाँ, ये हो सकता है. कभी कभी टेक्स्ट बुक में उदाहरण सिर्फ ग्रामर का पॉइंट समझाने के लिए बनाए जाते हैं, तो असल जिंदगी के संदर्भ से कटे होने पर वो अजीब लग सकते हैं. जैसे ही क्राइड बिकॉज आई हैड अ हेडेक, ये शायद किसी बहुत ही खास सिचुएशन में मतलब दे, है ना. और दूसरे वाले में आई डिडंट गो टू द पार्टी व्हेन आई फिनिश माय होमवर्क, इसमें शायद टेंस की गड़बड़ है, फिनिश की जगह फिनिश्ड होना चाहिए था. लेकिन अगर हम सिर्फ क्लॉज जोड़ने के तरीके पर ध्यान दें तो बिकॉज कारण बता रहा है और व्हेन टेंस ठीक करने के बाद समय. जरूरी बात यह है कि ये शब्द क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं. चैप्टर का फोकस इसी स्ट्रक्चर पर है.
समझ गई. तो ये तो हुई क्लॉजेस को जोड़ने की बात, लेकिन चैप्टर में आगे सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के अलग अलग प्रकार या फंक्शंस की भी बात हुई है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. ये जानना क्यों जरूरी है? क्या बस ये पहचान लेना काफी नहीं कि एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है?
नहीं, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि वो सबॉर्डिनेट क्लॉज वाक्य में क्या काम कर रहा है, उसका रोल क्या है. वो सिर्फ एक जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, बल्कि वाक्य के मतलब में एक खास तरह का योगदान दे रहा है. पेज 52 पर असेसमेंट रिव्यू सेक्शन में इसके अच्छे उदाहरण हैं. अगर संक्षिप्त में देखें तो पहला है नाउन क्लॉज. ये क्लॉज एक नाउन की तरह काम करता है, यानी ये वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी. उदाहरण के लिए, व्हाट शी सेड वॉज ट्रू. इस वाक्य में व्हाट शी सेड, ये पूरा का पूरा क्लॉज ही वाक्य का सब्जेक्ट है, ये किसी बात या चीज की जगह ले रहा है. दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसे डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है. जैसे द बुक दैट आई बोरोड वॉज ग्रेट. यहां डैट आई बोरोड हमें बता रहा है कि कौन सी किताब बढ़िया थी, वो वाली जो मैंने उधार ली थी. ये बुक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है.
ये भी समझ आया, किसी नाउन के बारे में बताने वाला क्लॉज.
और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज. ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, ये किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. ये अक्सर बताता है कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ, या किस शर्त पर हुआ. उदाहरण, आई लेफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. यहाँ व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन ये बता रहा है कि मैं कब निकला. ये लेफ्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है.
करता है. एक ही तरह का दिखने वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज असल में अलग अलग काम कर सकता है. कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव, तो कभी एडवर्ब.
ये जानने से तो वाक्य को एनालाइज करना आसान हो जाता होगा, खासकर जब वाक्य लंबे और मुश्किल हों. अब एक और पॉइंट पर आते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करता है, क्लॉज और फ्रेज का अंतर. ये दोनों ही तो शब्दों के समूह हैं, फिर इनमें फर्क कैसे करें? हाँ, ये वाकई एक आम कन्फ्यूजन पॉइंट है और इसे समझना बहुत जरूरी है. पेज 50 पर ही क्लॉज और फ्रेज की तुलना करने वाली एक टेबल है जो इसे काफी हद तक साफ करती है. देखिए, सबसे बड़ा और पक्का अंतर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन. क्लॉजेज में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ये बात पक्की है, चाहे वो मेन क्लॉज हो या सबॉर्डिनेट क्लॉज. जबकि फ्रेजेज में सब्जेक्ट और वर्ब का ये जोड़ा नहीं होता. फ्रेज शब्दों का समूह तो है, पर उसमें या तो सब्जेक्ट नहीं होगा, या वर्ब नहीं होगा, या फिर वर्ब किसी ऐसी फॉर्म में होगा जैसे आईएनजी या टू प्लस वर्ब बिना मेन वर्ब के, कि वो क्लॉज नहीं बना पाएगा.
तो बस ये चेक करना है कि ग्रुप में अपना सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं. अगर है तो क्लॉज, नहीं तो फ्रेज. यही है मोटी बात.
मोटे तौर पर हाँ, यही मुख्य पहचान है. एक और अंतर मतलब से जुड़ा है. मेन क्लॉज अपने आप में पूरा मतलब दे सकता है. सबॉर्डिनेट क्लॉज अकेले पूरा मतलब नहीं देता, पर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है. फ्रेजेस तो अपने आप में कभी भी पूरा मतलब दे ही नहीं सकते, वो हमेशा वाक्य के किसी हिस्से की तरह ही काम करते हैं.
उदाहरण से बात और साफ हो जाएगी शायद. जैसे पेज 50 पर क्लॉज का उदाहरण था, शी रन्स. इसमें सब्जेक्ट शी, वर्ब रन्स है.
हाँ,
वही फ्रेज का उदाहरण है आफ्टर द लॉन्ग रेस. इसमें सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा नहीं है और ये अधूरा सा है।
बिल्कुल।
पेज 52 से एक और क्लॉज ही रैन, फ्रेज आफ्टर लंच, साफ दिख रहा है फर्क। और पेज 50 पर जो प्रैक्टिस बी थी उसमें भी ये क्लियर है, जैसे रनिंग डाउन द स्ट्रीट, इसमें रनिंग तो है पर उसका सब्जेक्ट नहीं है, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, तो ये फ्रेज है।
सही।
विद अ रेड रिबन, इसमें तो न सब्जेक्ट है न वर्ब, तो ये भी फ्रेज है।
हाँ।
दूसरी तरफ बिकॉज शी वॉज स्लीपी, इसमें सब्जेक्ट शी है और वर्ब वॉज है, तो ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ।
बिल्कुल।
अच्छा, उस प्रैक्टिस में एक हु लिव्स नेक्स्ट डोर भी था, इसमें तो सब्जेक्ट हु और वर्ब लिव्स है, तो तकनीकी रूप से ये भी क्लॉज हुआ ना, एडजेक्टिव क्लॉज।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हु लिव्स नेक्स्ट डोर एक क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज।
एग्जैक्टली।
ये अच्छा उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि क्लॉजेस भी नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए फ्रेजेस की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो अंदर की बनावट है वो क्लॉज वाली ही होती है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ।
मेन क्लॉज अकेले खड़े हो सकते हैं, अपना मतलब दे सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज अकेले नहीं खड़े हो सकते, उन्हें मेन क्लॉज का सहारा चाहिए और वो एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, क्यों, कब, कौन, कैसे वगैरह। और फ्रेजेस वो सिर्फ शब्दों के समूह हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा नहीं होता, और इन क्लॉजेस को सही से जोड़ने से हमारे वाक्य ज्यादा बेहतर, ज्यादा जानकारी वाले और असरदार बनते हैं। लेकिन सवाल वही है, ये सब जानना सिर्फ ग्रामर के नियम रटना है या इसका कोई असली फायदा भी है हमारी रोजमर्रा की भाषा में?
नहीं नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ नियम रटना बिल्कुल नहीं है, ये अपनी भाषा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की एक चाबी है, एक टूल है। क्लॉजेस को समझना दो मुख्य चीजों में जबरदस्त मदद करता है। एक तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी पढ़कर समझना। जब आप लंबे और मुश्किल वाक्य पढ़ते हैं, सोचिए कोई अकादमिक टेक्स्ट या कोई कानूनी दस्तावेज, तो क्लॉजेस को पहचानने की काबिलियत आपको उस वाक्य को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है। आप समझ पाते हैं कि मुख्य बात क्या है जो मेन क्लॉज में होगी और बाकी की जानकारी क्या है जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस में होगी। इससे गलतफहमी से बचा जा सकता है।
हाँ, ये तो है, लंबे वाक्यों को देखकर घबराहट कम हो जाती है अगर उन्हें तोड़ना आता हो।
बिल्कुल। और दूसरा फायदा है राइटिंग स्किल्स में, यानी लिखने के कौशल में। जब आप खुद लिखते हैं, चाहे वो एक ईमेल हो, कोई रिपोर्ट हो या कोई कहानी, क्लॉजेस की समझ आपको ज्यादा साफ, सटीक और प्रभावशाली वाक्य बनाने में मदद करती है। आप सिंपल वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स वाक्य बना सकते हैं, अपने विचारों में ज्यादा गहराई और फ्लो ला सकते हैं। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किस बात पर जोर देना है उसे मेन क्लॉज में रखकर, और किस बात को बस एक सहायक जानकारी की तरह पेश करना है उसे सबॉर्डिनेट क्लॉज में रखकर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ और असरदार कम्युनिकेशन की नींव है, फंडामेंटल है।
तो मतलब ये सिर्फ स्कूल के ग्रामर टेस्ट पास करने के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में बेहतर तरीके से पढ़ने, लिखने और शायद सोचने के लिए भी जरूरी है। मुश्किल विचारों को समझने और समझाने के लिए ये एक तरह की बुनियाद है। बहुत बढ़िया। तो ये थी चैप्टर 7 द क्लॉज क्लब पर हमारी आज की बातचीत। हमने समझा कि क्लॉज क्या है, मेन और सबॉर्डिनेट में क्या फ़र्क है, उन्हें जोड़ा कैसे जाता है, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस के प्रकार क्या है, और क्लॉज ऑफ फ्रेज का कन्फ्यूजन भी दूर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये सब अब सुनने वालों के लिए ज़्यादा साफ हो गया होगा।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है। हमने देखा कि सबॉर्डिनेट क्लॉजेज अलग अलग तरह की जानकारी जोड़ते हैं, समय, कारण, शर्त, विरोधाभास, वर्णन वगैरह। तो क्या हम जिस तरह का सबॉर्डिनेट क्लॉज या जिस तरह का सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन चुनते हैं उससे वाक्य के मतलब या उसके जोर एम्फेसिस पर फर्क पड़ सकता है? जरा सोचिए, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए, और बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इन, क्योंकि बारिश हो रही थी हम अंदर रहे। सिर्फ कंजंक्शन बदलने से मतलब कितना बदल गया। या ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लीविंग, उसने मुझे बताया कि वो जा रहा था, ये नाउन क्लॉज है, क्या बताया। और ही लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, वो चला गया जब मैं पहुंचा, ये एडवर्ब क्लॉज है, कब गया। तो अगली बार जब आप कुछ पढ़ें या लिखें तो जरा ध्यान दें कि लेखक ने खास तरह के क्लॉज या कंजंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया है, क्या कोई और चॉइस होती तो मतलब बदल जाता। ये सोचने से भाषा की बारीकियों की समझ और बढ़ सकती है।
वाकई ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे छोटे छोटे शब्द और ये बनावट हमारे कहने के अंदाज और मतलब को कितना बदल सकते हैं। व्याकरण सिर्फ नियम नहीं बल्कि विचारों को शेप देने का एक टूल भी है। खैर, इस ग्रामर की दुनिया की सैर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।